समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और डेडलाइन में बात करेंगे महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मनोज, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मनोज, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभर कर उदाहरण स्थापित कर रहा है।
Prime Minister Narendra Modi expresses confidence that the budget session will infuse new confidence and energy in attaining the goal of Viksit Bharat by 2047.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा।
Two terrorists killed in an encounter with security forces in Poonch district of Jammu and Kashmir.
और भारत तथा इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the 33rd Foundation Day of the National Commission for Women. Hello, listeners. Today we celebrate the milestone for women's rights in India as the National Commission for Women marks its 33rd Foundation Day, a day dedicated to honoring the power, resilience and achievements of women and to furthering the cause of gender equality.
श्रोताओं, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना था कि भारत में महिलाओं को समान अवसर और उचित उपचार मिले। पिछले 33 वर्षों में NCW महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम करता आया है, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया है और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया है।
Yes, Manoj, and the theme for this year's Foundation Day is Nari Tu Narayani, reflecting the strength, resilience and divine power of Punya Shlok Akhilya Devi Holkar. And this theme is a call to recognize and honor the limitless potential of women across India. And as part of today's celebrations, NCW is focusing on the incredible strength and resilience of women, from advocating for policy changes to providing support to victims of violence. The commission has been instrumental in shaping India's journey towards a more inclusive and just society for women.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से संबंधित मुद्दों को भी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जागरूकता बढ़ाने, परामर्श प्रदान करने और महिलाओं के अधिकारों के कड़े प्रवर्तन के लिए लगातार प्रयास करने के कारण आयोग जेंडर न्याय के लिए निरंतर प्रगति कर रहा है। सालों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कानूनी सुधारों के लिए जोर देना और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाने की आवाज उठाना शामिल है। इसके अलावा आयोग ने महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व के लिए कई कार्यक्रमों पर भी काम किया है।
Yes, absolutely, Manoj. And on the Foundation Day celebrations of the National Commission for Women, the event witnessed an inspiring address by none other than the Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, who emphasized the remarkable strides women in India have made in breaking barriers across different sectors. And Sri Dhankar, during his address, spoke passionately about the country's progress in ensuring gender equality and the empowerment of women. And for the first time in Indian history, Manoj, he reminded us that the constitution now provides a one-third reservation for women in the Lok Sabha and state legislatures. So this momentous move aims to ensure that women have a stronger voice in the legislative process, a vital aspect of building a more inclusive society.
Uparashtrapati Jagdeep Dhankar ne kaha ki mahilaon ke yogdan ke bina desh samriddh nahi ho sakta hai. नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि देश ने पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं हर चुनौती को पार कर रही हैं और अब वे रक्षा बलों में युद्ध के लिए भी तैयार हैं, जो एक अभिषेक ध्यान देना ऐतिहासिक उपलब्धि है. महिलाएं न केवल इस चुनौती का सामना कर रही है बल्कि वे इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रही हैं. श्री धनखड़ ने अपने विश्वास को साझा करते हुए कहा कि आज महिलाएं ऐसे वातावरण में जी रही हैं जो पहले से कहीं ज्यादा सहायक और सकारात्मक है. ये एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां उन्हें न केवल प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त भी किया जाता है. उन्होंने हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन पर विचार करते हुए कहा कि देश की महिलाएं अब पहले से कहीं ज्यादा आकांक्षी, प्रेरित और आत्मविश्वासी हैं.
Absolutely, Manoj. And so, Manoj, now as we look forward, it's clear that the journey for women's equality is far from over. But with organizations like the NCW leading the charge and with the unwavering strength of women across the country, we are seeing a change one step at a time. Today, let's take a moment to reflect on the incredible progress we have made and the road ahead for women in India. And to all the strong women out there, keep pushing boundaries. Your strength is what shapes our future. Let's continue to support women's rights and build a more equal society.
अभिषेक, आज की टिप्पणियों पर विचार करते हुए आइए हम उस यात्रा के बारे में सोचें जो हमारे सामने है. हमें अपने जीवन और कार्य स्थलों में छिपे हुए पूर्वाग्रहों को सवाल करने और चुनौती देने का सिलसिला जारी रखना होगा. हम सभी किस तरह से एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर सकते हैं जो हर दृष्टि से महिलाओं को पोषित और समर्थ बनाता है. हम व्यक्तिगत रूप से जेंडर न्याय की राह में भी अवरोध बाकी है, उन्हें कैसे हटाने में मदद कर सकते हैं. आने वाले दिनों में राष्ट्रीय महिला आयोग इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद जारी रखेगा और हमें एक समाज के रूप में स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा. हर महिला की सफलता एक कदम और पास है उस भारत की ओर जहां समानता सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन चुकी है.
Yes, Manoj, and so to wind up a discussion on the 33rd Foundation Day of the National Commission for Women, we conclude this segment of a broadcast for today. But let us all take this message of empowerment, equality and justice into our hearts as we continue our daily lives. And as we strive for progress, remember that every step forward is a victory.
केंद्रीय बजट 2025-26
आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण.
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार.
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक
1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक
100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Yes, and in Assam, Jawaharlal Nehru College of Boko and Kamrup District is the first institution which has set up a remote pilot training organization, popularly known as a drone pilot, in collaboration with Northeast Center for Technology Application and Reach an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India. We have more from our correspondent.
With the vision of Prime Minister Sri Narendra Modi to establish India as a global drone hub by 2030, Jawaharlal Nehru College of Boko in Kamrup district has set up a remote pilot training organization to fill the requirements of the 21st century demands. It is the first one at the college level in the entire Northeast. The college received the required permission from the Director General of Civil Aviation. The trainees are nominated by their state governments, and initially this college will only train women pilots from the Northeast to avail the benefits of Drone Didi scheme. This institute is also targeting students from neighboring countries like Bhutan, Nepal and Bangladesh to impart drone pilot training to them. Drone training is very important in many sectors including agriculture, defense, media and in industrial production. Aminul Haqzuddar, Akashbani News, Guwahati.
And researchers from the National Institute of Technology NIT, Tiruchirappalli, Tamil Nadu have developed Bully Ind, an educational gaming application aimed at raising awareness and preventing cyberbullying among school students falling under the category of serious games. We have more from a correspondent.
Bully Int, initiating cyberbullying awareness through educational gaming project, is sponsored by DST SERB, now renamed as DST ANRF Anusandhan National Research Foundation, under the Startup Research Grant Scheme, and is executed by Dr. Sitara K, Assistant Professor, Department of Computer Science, NIT, to ensure authenticity and relevance. The researchers collected real-life theories from various districts and states through school teachers and student counselors. Using this valuable input, the game is designed to incorporate real-life scenarios and educational videos covering topics such as types of cyberbullying, official complaint procedures, and responsible social media behavior. A unique feature bullying is the integration of emotional analysis, which helps identify how students react to different situations, offering insights into their emotional responses and understanding. The game was first demonstrated at Trichy Kendra Vidyalaya, OFT, where 27 students participated. The game was also introduced at Government Polytechnic College, Trichy, with 13 students. The feedback highlighted the game's effectiveness, with students expressing that it provided valuable insights into how their behavior affects others emotionally, how to handle cyberbullying incidents, and where to report them. They also learned the importance of being responsible citizens, both online and offline. They also gained valuable knowledge about legal procedures and consequences associated with cyberbullying. The students found the game highly impactful and expressed their interest in more such educational initiatives in the future. Following the successful pilot in Trichy, it's planned to roll out the game across various schools in the district, further to spread awareness and empower students with the knowledge and tools to combat cyberbullying effectively. By leveraging interactive learning, Bully In aims to create a safer and more responsible digital environment for young users. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
Moving on, two snow sculptures from the Kashmir region and another artist from Agra, Uttar Pradesh, had been selected to represent India at the prestigious International Snow Sculpture Competition in the United States of America during the fourth week of this month. We have a report from a correspondent in Srinagar.
One artist, Zuhurdeen Lone, is from Singpura Patan in North Kashmir's Baramulla district, and another, Suhail Muhammad Khan, a deaf and dumb, is from Neva in South Kashmir's Pulwama district, who participated along with Mridul Upadhyay from Agra, Uttar Pradesh, in the international event that commenced on 19th of this month in the United States of America. Talking to Parikrama after reaching home from America, Zuhurdeen Lone expressed joyous moments after securing third position for Team India in the कंपटीशन.
मैं साउथ एशिया की जो पहली स्नो स्कल्पचर टीम है उसका कैप्टन हूं. मैं अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप मिनेसोटा एंड कोलोराडो के लिए गए थे. मेरे साथ और एक आर्टिस्ट जो कश्मीर से है, सहेल मोहम्मद खान, जो डेफ एंड म्यूट है, और एक आगरा से मृदुल उपाध्याय, एक और आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ थे टीम में। पहले हम मिनेसोटा गए थे, मिनेसोटा में हमारी 3 दिन की चैंपियनशिप थी। 3 दिन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के बाद काफी अच्छा रहा, काफी अच्छी एक्सपीरियंस रही। सीखने को तो हमें बहुत कुछ मिला है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी हमें जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो इक्विपमेंट, जो टूल्स है। हमें वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें 2 टूल्स वहाँ पे प्रोवाइड किए इस बार, जिससे हम लोगों ने काम किया है, काफी फिनिश काम किया है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ था क्योंकि सबके डिजाइन अच्छे थे। -35 डिग्री था वहाँ पे, तो इतनी ठंड में हम लोगों ने अपना जी जान लगाया था और काम किया था वहाँ पे। जजमेंट के बाद जर्मनी को फर्स्ट पोजीशन आई थी और टीम मेक्सिको सेकंड और हमारी टीम को 3rd प्राइज मिला है।
दिस ग्लोबली एक्लेम्ड कंपटीशन यूनाइट्स मास्टर स्कल्प्टर्स वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू शोकेस आर्टिस्टिक एक्सलेंस इन द यूनिक मीडियम ऑफ स्नो अंडर एक्सट्रीम सब जीरो टेम्परेचर्स। द कंपटीशन ड्रू ग्लोबल अटेंशन विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज शोकेसिंग देयर स्किल्स। तारिक राठौर फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी श्रीनगर।
To expedite the growth of micro, small and medium enterprises in the state, the West Bengal state government has planned to set up a small market complexes in each district to showcase Bengal's own small and cottage industries to tourists. These market complexes will be handed over to self-help groups, SAGs. Members of these groups will be able to sell their products there. Public Works and Public Health Engineering Minister Pulak Roy has announced that such market complexes will be set up in 7 districts in the first phase. He said that preparations have started for creating such a market complex in the Uluberia subdivision of Howrah. We have a report.
The state government has decided to build special shopping malls in all district headquarters. Separate spaces will be provided for SAGs to sell their products. A policy decision regarding this was taken in the state cabinet meeting. The land identification work for this has already been completed. The land will be given free of cost to interested companies for building the mall. However, 2 floors of the mall must be given to SAGs for marketing their produced goods. The Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, mentioned that Bengal's reputation in leather craftsmanship is now worldwide. To showcase it better to tourists from home and abroad, the state government has planned to set up a shopping mall for leather and cottage industry products in front of the Alipur Jail Museum here in Kolkata. Housing Infrastructure Development Corporation, HIDCO, will execute this project. Sandipan Dashgupta, Akashbani, Kolkata.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। अतहर सईद से। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है।
Yes, in the Hockey India League, HIL, Sachi Rar Bengal Tigers will face Tamil Nadu Dragons at 6 p.m, while JSW Surma Hockey Club will take on Hyderabad Tufans at 8:15 p.m. in the semi-finals today, and both the matches will be played at the Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela, Odisha. And moving on, in some business news today, benchmark domestic equity indices today maintain the positive trend amid buying across all sectors and release of key earning reports. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 741 points or 0.97% to close at 77,500. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 soared 259 points or 1.11% to settle at 23,508. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter and first Chief Minister of Bihar, Shri Krishna Sinha, who died on the 31st of January 1961. He underwent many terms of imprisonment for a total of about 8 years during the independence movement. He was known as Bihar Kesari, and along with Dr. Rajendra Prasad and Anugraha Narayan Sinha, Shri Krishna Sinha is regarded amongst the architects of modern Bihar.
Shri Krishna Sinha was born on 21st of October 1887 in Sheikhpura district of Bihar. He studied law and started practicing in Munger in 1915. Under the influence of Mahatma Gandhi, he gave up his law practice in 1921 to take part in the non-cooperation movement. In 1930, he played an important role in the Namak Satyagraha at Gadapura. He was also involved in relief and rehabilitation after the 1934 Nepal-Bihar earthquake. In 1935, he became a member of the Central Assembly.
On the 20th of July 1937, he became the Premier of Bihar Province when Congress came into power. He and his colleague Anugrah Narayan Sinha disagreed with the governor on the issue of release of political prisoners and resigned. The then governor had to accede to the demands for the release of prisoners from cellular jail, and Bihar Tenancy Act was reformed in favor of peasants. They then resumed office, but they again resigned in 1939, as did all Congress chief ministers, over the question of involving India in the Second World War without the consent of the Indian people.
Impressed by his courage, in 1940, Gandhi described him as the first Satyagrahi of Bihar. When the Quit India movement started in 1942, he was arrested on 10th of August. He was released in 1944 from Hazaribagh jail after he became seriously ill.
Shri Krishna Sinha was a member of the Constituent Assembly of India. He was a staunch opponent of caste system. He led the entry of so-called lower castes into the Baidyanath Dham temple, Deogarh, which reflected his commitment towards the upliftment and social empowerment of the oppressed sections of the society. Except for the period of World War II, Shri Krishna Sinha served as the Chief Minister of Bihar from the time of the first Congress ministry in 1937 until his death in 1961.
We also remember freedom fighter Minjur Bhaktavatsalam, who died on 31st of January 1987. He actively participated in the freedom movement from an early age and was imprisoned during the Salt Satyagraha and the Quit India movement.
Bhaktavatsalam was born on the 9th of October 1897 in the Madras Presidency. He joined the Indian Independence Movement as a student. Later, he joined the Indian National Congress and became a member of the Madras Provincial Congress Committee in 1922. Bhaktavatsalam started the daily newspaper titled India. He was injured during the Salt Satyagraha at Vedaranyam. He was arrested in 1932 for conducting India's Independence Day celebrations and spent 6 months in jail.
Bhaktavatsalam entered the Madras Assembly successfully after winning the Tiruvallur seat in the 1937 election. However, he resigned along with the other office holders of the Indian National Congress on declaration of Second World War. He participated in the Quit India movement agitations and was jailed by the British. On his release in 1944, he was elected to the Constituent Assembly of India.
After independence, Bhaktavatsalam won the Sri Perumbadur seat in 1957 and entered the assembly when he was appointed the Home Minister. Minjur Bhaktavatsalam also served as the Chief Minister of Madras Presidency from 1963 to 1967. We salute the great nationalist.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस. श्रोताओ, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं अकीलन को. आज पुण्यतिथि है तमिल भाषा के सुविख्यात साहित्यकार, उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक, पत्रकार, व्यंग्यकार, यात्रा लेखक, नाटककार तथा पटकथा लेखक अकीलन की. उनका जन्म 27 जून 1922 को तमिलनाडु में हुआ था. अकीलन का पूरा नाम पेरुंगलूर वैद्य विंगम अखिलंदम था. उन्होंने अपना अधिकांश लेखन कार्य अकीलन नाम से किया और इसी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की. एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वे जाने जाते हैं. वर्ष 1961 में प्रकाशित वेंगयीन मैंदन उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास था, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया. फिर 1965 में कयल विषि निकला. इस पर उन्हें 1968 में तमिल विकास परिषद का पुरस्कार मिला. अकीलन का तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है वेत्री तिरुनगर, जो 1966 में प्रकाशित हुआ था. 1973 में प्रकाशित उनकी रचना एंगे पोगी रोम एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है. अकीलन को इसी कृति पर 1976 में राजा अन्य मलय चेट्टियार पुरस्कार भी मिला था।
एलन अलेक्जेंडर मिल्न पास्ड अवे 1956। He was an English writer best known for his books about the teddy bear, Winnie the Pooh, as well as for children's poetry. Milne was primarily a playwright before the massive success of Winnie the Pooh overshadowed all his previous work. He served in both World Wars as a lieutenant in the Royal Warwickshire Regiment in the First World War and as a captain in the Home Guard in the Second World War.
आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया की। उनका जन्म 15 जून 1929 को हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। 40 और 50 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।
Yes, and Nagesh born Cheyur Krishna Rao Nageshwaran passed away on this day in 2009. He was an Indian actor and comedian mostly remembered for his comic roles in Tamil films to the 1960s. Nagesh was born in Dharapuram. He acted in over 1,000 films from 1958 to 2008, performing in a variety of roles as a comedian, lead role, supporting actor and antagonist. He also acted in Telugu, Malayalam, Hindi and Kannada films. Hollywood actor Jerry Lewis largely inspired Nagesh's style of comedy. Similarities between Nagesh and Lewis earned Nagesh the sobriquet, the Jerry Lewis of India. He was nicknamed the King of Comedy for his impeccable comedy, timing and body language.
आज पुण्यतिथि है पंजाबी की प्रतिष्ठित बहुचर्चित अग्रज लेखिका दलीप कौर तिवाना की। उनका जन्म 4 मई 1935 को हुआ था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दलीप कौर तिवाना को 2004 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। उनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2001 में सरस्वती सम्मान उपन्यास कथा कहो उर्वशी के लिए दिया गया।
Leslie Barbara Ashton passed away on this day in 2012. He was an American pop singer. In 2001, she debuted through DreamWorks Records with the single Like Wow. Initially set to release her debut album through the label, it was cancelled. From 2006 and 2009, Carter was a member of the band she founded, The Other Half. Let's listen into a hit track, Like Wow, and it's from the original motion picture, Shrek. A thing looks bad.
आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता कृष्ण निरंजन सिंह की। उनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। केएन सिंह ने लगभग 250 फिल्मों में काम किया।
बेटे आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, फिर हमसे गलती हो गई। खैर, लेट्स फॉरगेट इट। तुम्हारा नाम क्या?
आनंद।
आनंद बहुत अच्छा नाम है,
लेकिन
बोलो क्या बात है, बोलो।
Yes, and Dattatreya Ramachandra Bendre was born on this day in 1896, popularly known as Dara Bendre. He is generally considered to be the greatest Kannada lyric poet of the 20th century and one of the greatest poets in the history of Kannada literature, a pioneering poet of Kannada's Navodaya movement and a leading figure in the linguistic renaissance of Kannada in the region of North Karnataka. Bendre forged a new path in Kannada literature and modern Kannada poetry through his original use of Desi Kannada, particularly Dharwad Kannada, the form of Kannada spoken in North Kannada region of Dharwad, and the richness, originality and euphony of his poetry and his charismatic personality result him as being hailed as the Vara Kavi, a boon gifted poet seer.
आज जयंती है मेजर सोमनाथ शर्मा की। उनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वे भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में अपनी वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं।
देखो जवानों,
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।